Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Jaya Gurudev श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञान तिमिरंश ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन श्लोक क्रमांक 54 अंधौ अमीशां पौराणा निर्वाक वेशकृतौ उभौ अक्षणवताम अधिपतिः ताभ्याम याति करोति च अंधावामिशां पौराणां निर्वाक्पेशकृताव उभौ अक्षणवताम अधिपतिः ताभ्याम याति करोति च अंधावमिषां पौराणां निर्वाक्पीशकृता उभौ अक्षण्वतामधिपति ताभ्यां याति करोति च अंधावमिषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृता उभौ अक्षण्वतामधिपति ताभ्यां याति करोति च अंधावमीशां पौराणां निर्वाक्विशस्कृता उभौ अक्षण्वतामधिपतिः ताभ्यां याति करोति च अंधावमीशां पौराणां निर्वाक्विशस्कृता उभौ अक्षण्वतामधिपतिः अभ्यां याति करोति च अंधावमीशां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृता उभौ अक्षण्वतामधिपतिः ताभ्यां याति करोति च माताए अंधौ अंधा अमीशां उनमें से पौराणां निवासियों से निर्वाक निर्वाक नामक पेशस्कृतौ पेशकृत नाम का उभौ दोनों अक्षण्वताम आंख वाले व्यक्तियों का अधिपति शासक ताभ्याम उन दोनों के साथ याति जाया करता था करोति कार्य करता था च तथा अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक दो व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों का शासक था किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहां जहां जाता था और नाना विध कार्य किया करता था। तात्पर्य यहां पर जीव के हाथों तथा पावों की ओर संकेत है। दोनों पाव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। यदि कोई चलने के लिए अपने पावों पर ही आश्रित रहे तो वे उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टक्कर करा सकते हैं। इस प्रकार अंधे पावों द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनके आंखें नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि हाथों तथा पावों में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कई छिद्र होते हैं, यथा दो आंखें, दो नथने, दो कान तथा एक मुख, किंतु अधोभाग में मुखाओं और टांगों में कोई छिद्र नहीं होते। फलतः हाथों तथा पावों को अंध कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं तो भी उसे हाथों तथा पावों से ही कार्य करना होता है। यद्यपि जीव अन्य अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है या कुछ कार्य करना होता है अथवा किसी को छूना होता है तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पांवों को ही प्रयोग में लाना होता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले। सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरुत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। रप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये पुरंजान उपाख्यान के ये श्लोक यहाँ पर चर्चा किया गया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले शब्द यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बताया गया कि ये दो अंधौ अमीशाम पुराणाम निर्वाक पेशकृतौ उभौ, ये हाथ और पैर के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों अंधे होते हैं, खास करके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के बारे में यहाँ पर बताया। कर्मेंद्रिय ये जो कर्मेंद्रियों में हाथ और पैर के बारे में अंधा बताया गया है। तो निर्वाक और पेशकृत नाम के दो व्यक्ति बताए, दोनों अंधे हैं। लगे राजा पुरंजन है, ये आंख वाले थे, लेकिन ये दोनों अंधों के साथ वो चलते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये अंधों का मतलब खास करके कर्मेंद्रिय, आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि एक श्लोक आता है 1.3.43 में, श्लोक ऐसा है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विसह। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाने के बाद दोनों साथ में दो चीज साथ में लेके जाते हैं, धर्म और ज्ञान। कलव नष्ट दृशामेशा, जो कलयुग के जो लोग हैं जो दृष्टि खो जाते हैं वो अंधे बन जाते हैं। पुराना अर्क को उदनो देता, ये श्रीमद् भागवतम का उसी समय प्रकट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में शाश्वत काल के लिए धाम में ही वास करते हैं और अपने शुद्ध भक्त इटर्नल एसोसिएट के साथ और उनके पैराफर्नेली के साथ भगवान के धाम में रहते हैं। तो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो अंतरंग शक्ति से बना है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल में आते हैं तो यहाँ पर आत्मा माया के साथ आते हैं। जैसे भगवद्गीता में लिखा है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्मा माया। भगवान जगत में आते हैं तो ये आत्मा माया मतलब अंतरंग शक्ति के द्वारा वो प्रकट होते हैं और भगवान इस जगत में आते हैं तो कई सारे लीला करते हैं, नाम रूप गुण लीला होता है भगवान का। ये भौतिक प्रकृति का क्रिएशन नहीं है बल्कि आध्यात्मिक कार्य है।
और भगवान आते हैं तो किस लिए आते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स, जो भौतिक जगत में जो हम जैसे बद्ध आत्मा है उनको पुनर् वापस अपने धाम में लेके जाने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान धर्म का संस्थापन करते हैं, तो ये धर्म का संस्थापन करना या भौतिक जगत में फंसे हुए माया के द्वारा फंसे हुए जीवात्मा को उद्धार करना, ये कोई बद्ध आत्मा का कार्य नहीं है। भगवान स्वयं ही धर्म का पुनर्स्थापना करते हैं या भगवान किसी एक व्यक्ति को एम्पावर करते हैं, उनके द्वारा वो कराते हैं। तो असली धर्म क्या है, ये है वो असली धर्म वही है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध को समझ सकते हैं और भगवान के साथ हमारा क्या कार्य है उसको समझ सकते हैं। अंत में हम हमारा डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के धाम जाने के लिए जो मार्ग दिखाता है वही असली धर्म है। तो ये बद्ध आत्मा, भौतिक जगत के जो बद्ध आत्मा है, ये धर्म के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो माया के जो आवरण में जो फंसे हुए जीवात्मा कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो जीवात्मा है वो आहार, अनिद्रा, भय, मैथुन के चक्कर में ही चलते रहते, हमेशा इसी के बारे में चिंतन करते रहते। तो हालांकि वो इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं कभी कभी, कुछ जीवात्मा है जो मनुष्य कैटेगरी में आते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, तो बोलते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष के चक्कर में ही रहते हैं। उनको भगवान के धाम में के बारे में, भगवान के बारे में, ज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में उनका कोई भी सरोकार नहीं है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में जो कलह का युग है, तो कलयुग का कलह के युग में हर व्यक्ति अंधे हैं। और इनको श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जीवात्मा अंधकार में रहता है तो वास्तव में ये जानवर जैसे ही रहते हैं। फिर भी प्रभुपाद जी तो बताते हैं कि जो कलयुग का जीव है रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल लाइफ, तो है जानवर लेकिन रॉयल एडिशन, थोड़ा सा अच्छे जानवर हैं। तो ये इतने अंधे हैं, क्यों अंधे बताया गया है कि क्योंकि उनको ये शारीरिक ये जो नीड्स के आगे वो कुछ नहीं जानते। जो कुछ करेंगे केवल कैसे मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करूं, इसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो ये आप कहीं भी जगह जाइए, हर व्यक्ति या तो खाने के बारे में सोचते रहते हैं, आहार, रेस्टोरेंट्स इतना बड़ा बड़ा अरेंजमेंट करते हैं, कितने बड़े बड़े, हालांकि करते वही है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन रॉयल एडिशन, बड़े बड़े फाइव स्टार होटल खोलेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां पर जाके करेंगे क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन थोड़ा सॉफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। तो कोई भी देखिए, आप बड़े बड़े लोग हैं, जैसे रिच लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप जाके उनसे इंक्वायरी करेंगे आपका जीवन का, ये बताइए दिनचर्या क्या करते हैं, तो ऑलमोस्ट 99% केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी के बारे में उनका जीवन चला जाता है। तो उनको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, खास करके जो आत्मज्ञान नहीं रहता है। तो शारीरिक जो नीड्स है उसको फुलफिल करने में वो व्यस्त रहते हैं। तो अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही करते रहते हैं, और आजकल उसके लिए और ज्यादा फैसिलिटी भी क्रिएट किया गया है, तो अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो मोबाइल, उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी यही इसी के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, हाउ कैन आई ग्रेटिफाई माई सेंसेस इन ए नाइस वे। तो ये आत्मा का ज्ञान जब नहीं होता है, खास करके आत्मा जो है सो मन, बुद्धि और अहंकार इसके परे है, तो उसको जानना उनका बहुत मुश्किल है, वो नहीं जान सकते हैं। तो लेकिन फिर भी जब उनके पास आप जाएंगे कि आपके बारे में आप थोड़ा भगवान के भक्ति कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते दे आर सो प्राउड अपना जो भौतिक ज्ञान के बारे में और या साइंटिफिक नॉलेज के बारे में या मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में इतना प्राउड है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। उनको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमको कोई चीज का जरूरत नहीं है, और आपका जो चीज है वो आप ही रखिए, हमको नहीं चाहिए, हम सुखी हैं, तो क्यों हमको ये सब दे रहे हैं, हमको जरूरत नहीं है। और खास करके बोलते हैं भगवद गीता भागवत, टाइम किसके पास है, हर व्यक्ति टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम पूछते हैं कि टाइम नहीं है तो सबके लिए भगवान ने 24 घंटे दिया, आपके पास थोड़ा कम ही नहीं दिया तो आपको भी 24 घंटे दिए, टाइम जाता कहाँ है? आपके पास टाइम नहीं है जरूर है, लेकिन टाइम तो है आपका पास, कहीं ना कहीं टाइम देते होंगे, जाता कहाँ है? तो पूछेंगे तो ये केवल इंद्र तृप्ति है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके बारे में लोग बोलेंगे। बिजनेस क्यों बिजनेस करते हैं? सो दैट दे कैन अर्न नाइस मनी, सो दैट दे कैन ग्रेटिफाई देयर सेंसेस। तो इंद्र तृप्ति के लिए ही उनका समय जाता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य के लिए कोई समय नहीं है। यह आज की बात नहीं है, आज से 500 साल पहले भी ये कार्य कर रहे थे लोग, इंद्र तृप्ति के इसमें मग्न थे, और आध्यात्मिक कार्य के बारे में कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो भक्त उनको बताते थे कि आप थोड़ा भक्ति कीजिए, वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन कुछ सो कॉल्ड जो रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे वो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति नहीं करेंगे, और वासुली पूजा करेंगे, नाग काली और इधर उधर, मतलब देवी देवताओं का, या कुछ कंडोबा मसोबा हम देखते हैं ना, तो इसके पूजा करेंगे लेकिन भगवान के बारे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मतलब ये सारे पूजा करने से हमको भौतिक प्रगति करेंगे। लेकिन इस 500 साल पहले भी भक्तों ने देखा कि आप भगवद्गीता पढ़िए तो स्वीकार नहीं करते थे। कुछ लोग भगवद्गीता और भागवतम के बारे में प्रवचन भी करते थे तो उसका एक्चुअल मीनिंग को वो थोड़ा ट्विस्ट करके अपने मन के अनुसार लोगों का ये दिमाग को खराब करते थे। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसको स्थापित नहीं करते थे। तो ये भक्तों का ये जो हृदय है वो जब देखते थे, अरे इतने भगवान के भक्ति छोड़ के इतना इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, ये असली में ये सुख नहीं प्राप्त कर रहे, दुख अनुभव कर रहे, इनको पता नहीं है, अज्ञान में है। तो वो क्या करते थे, केवल उनके बारे में सोच के केवल दुख का अनुभव करते थे और कुछ नहीं करते थे, क्योंकि बोलने से सुनते नहीं है। तो भक्त क्या करते थे, मन ही मन प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान आप ही उनको कुछ बुद्धि दीजिए ताकि उनको उनका जीवन को बदल दीजिए। तो लेकिन वो खुद जो भक्त थे वो खुद अपने श्रीमद् भागवतम भगवद्गीता भगवान का नाम वगैरह बहुत सुंदर तरीके से उनका भक्ति चल रहा था। तो इतना तक कि अद्वैताचार्य प्रभु, अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है, फिर भी वो भागवतम का प्रवचन करने में इतने एक्सपर्ट थे, फिर भी उनका भी जो प्रवचन को लोग सुनते नहीं थे, वो जब बोल रहे थे तभी भी सुन नहीं रहे थे। इसीलिए अद्वैताचार्य प्रभु ने उन्होंने पूरे शास्त्र को निचोड़ निकाल के वहां से एक श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया। तो श्लोक क्या है, तो वो बताते हैं कि तुलसी दल मात्रेण, थोड़ा भगवान को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके न, थोड़ा सा जल अर्पण करके भगवान को तुलसी दल अर्पण कीजिए तो भगवान भक्तिभ्यो भक्तवत्सल, मतलब विक्रीडितम स्वमात्मा नाम भक्ति विभक्तोत्सल, मतलब भगवान इतने कृपालु है कि जो व्यक्ति तुलसी दल और थोड़ा पानी भगवान को अर्पण करता है तो भगवान अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, भगवान बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति भी भक्तवत्सल, भगवान इतने भक्तवत्सल है। इतना आसान तरीका होने के बावजूद भी लोग भगवान श्री कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे थे, इसीलिए अद्वैताचार्य प्रभु ने ये शालिग्राम शिला लिए और थोड़ा गंगा जल और थोड़ा ये पानी के साथ उनका अभिषेक कर रहे थे और भगवान का नाम जोर जोर से उच्चारण करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, तो अद्वैताचार्य प्रभु का जो नाम है इतना तीव्रता कि वो पूरा ब्रह्मांड को भेद कर, वैकुंठ जगत को भी भेद कर, सीधा गोलोक वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण थे वहां पर उनको सुनाई दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसी कारण में ये कलयुग में प्रकट हो गया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसीलिए अवतार हो गया है। तो लोग भगवान का भक्ति नहीं करते हैं और भक्ति नहीं करके ऐसे कार्य करते हैं कि वो जैसे जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर जैसे कार्य करते हैं, ताकि इतना भी परवाह नहीं करते कि अगले जन्म में हमें कुत्ता सुअर का जन्म मिलेगा। तो उनको बताते थे कि अगर आप ऐसे कार्य करेंगे आपको अगले जन्म में कुत्ता का जन्म मिलेगा। तो पूछते थे कुत्ता का जन्म मिला तो क्या हुआ, अच्छा है ना? वो कुत्ता भी बनने के लिए तैयार रहते हैं, तो वी आर रेडी टू बिकम अ डॉग, है ना। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि सो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिकमिंग डॉग, प्रभुपाद बोले आई हैव योर माई ब्लेसिंग्स टू यू। तो ऐसे लोग कुत्ता बिल्ली बनने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो इसलिए ये इन्होंने इंद्र तृप्ति में अपना पूरा आईसाइट है, जो आंख के जो दृष्टि है खो जाते हैं। कलव नष्ट दृशामेश, केवल इंद्र तृप्ति में ही मग्न रहते हैं और अपना पूरा दृष्टि है वो खो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अभी इसी कारण के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए अभी द्वापर युग में, और खास करके इस कली द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये जो द्वापर युग हुआ है और अभी जो कलयुग चल रही है, विशेष कलयुग और द्वापर युग है, क्योंकि ई द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जो व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। आप बोलेंगे एक बार प्रकट होते हैं, एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, बार बार प्रकट होते होंगे, ऐसा नहीं है कि 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 एक्चुअली 1000 मतलब 996 दिव्य युग मतलब एक ब्रह्मा जी का एक दिन। 996 मतलब क्या है, एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आके चले जाते हैं, 14 मनुस, और हर एक मनु का कालावधि 71 दिव्य युग। एक दिव्य युग मतलब कलयुग द्वापर युग त्रेता युग और सत्ययुग मिलके एक दिव्य युग होते हैं। ऐसे एक एक मनु का कालावधि है 71 दिव्य युग है। और भगवान श्री कृष्ण ये सातवीं मनु आउट ऑफ 14 मनु, सातवीं मनु का जब प्रकट होता है वो उनका कालावधि है, उनके 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, अन्य युग में नहीं। तो कितना विशेष ये है, मतलब 6 मनु निकल गए, अभी सातवीं मनु चल रहे मनु का कालावधि, और सातवीं मनु का 28वें दिव्य युग चल रहे, और उसका द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और भगवान इतने सारे लीला करते जाते हैं, कई सारे लीला करते हैं, और लीला करके ये किस लिए लीला करते हैं, हम सबका उद्धार के लिए, ताकि आगे जाकर जीवात्मा ये सारे लीलाओं को सुनेंगे, और लीला को सुनने से उनका जो ये हृदय है शुद्धिकरण हो जाएगा। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। भगवान का कथा सुनने से, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, उसको श्रवण और कीर्तन करने से हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय का जो अभद्र जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर नाम के जो 6 अनर्थ है वो साफ हो जाएगा। ऐसा कोई डिटर्जेंट हमारे पास नहीं है जो हृदय को मार्जन करने वाला। कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट बहुत सारे कंपनी प्रोड्यूस करता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये गीता भागवतम में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का लीला है, तो ये एक डिटर्जेंट है ताकि हमारा हृदय को मार्जन कर सकता है। भगवान इसीलिए प्रकट होते हैं, लीला वगैरह करते हैं। भगवान को लीला करना तो भगवत धाम में कर सकते थे, यहाँ पर क्यों आके करते हैं, ताकि वो भगवान अपने भक्तों से प्रेम, भगवान चाहते हैं कि ये सारे लीलाओं को, जैसे हरिपार्षद प्रभु बता रहे थे, तो कई सारे लोग ये कामी लोग होते हैं, उनको ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो लीला बहुत अच्छा लगता है, हाई रासकल लीला है, रास लीला नहीं है। और जो योगी लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको भगवान का कथा वगैरह अच्छा लगता है ना। तो कामी लोगों का ये अच्छा लगता है, और इनको ये अच्छा लगता है, और जो कामी लोगों को भगवान के बारे में अच्छा नहीं लगता है, और योगी लोग भगवान के भक्त लोग है ये, इनको कामी लोगों का लीला अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान ऐसा लीला करते हैं दोनों को एक साथ अट्रैक्ट करने के लिए, भगवान रास लीला करते हैं, ये दोनों को अच्छा लगता है, कामियों को भी अच्छा लगता है, भक्तों को भी अच्छा लगता है। तो ये भगवान ऐसे सारा लीला करेंगे ताकि कोई भी इसको पढ़ेगा तो उनका ये मन इतना आकर्षित हो जाएगा और वो और ज्यादा ज्यादा पढ़ने के लिए वो आतुर रहता है। तो इसीलिए भगवान इतना सारे लीला करते हैं, साथ साथ में भगवद गीता का ज्ञान भी देते हैं। 700 श्लोक वाला जो भगवद गीता भगवान लोगों को देते हैं ताकि असली धर्म का वो पुनर्स्थापन करते हैं। तो ये भगवद गीता तो 5000 साल पहले भगवान ने बताया है। आजकल हम देखते हैं कि हर एक गली गली में एक भगवान प्रकट होते हैं, तो सो कॉल्ड भगवान है, तो उनको बोलेंगे आप एक भगवद गीता लिखिए। तो उनका ज्ञान है, एक दिन मतलब कुछ साल के बाद, मतलब वो सो कॉल्ड ज्ञान देते हैं वो, तो कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। भगवान ने 5000 साल पहले भगवद गीता बताए थे, आज भी हम उसी भगवद गीता को पढ़ते हैं और उसी भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि इसी ज्ञान को मैंने हजारों करोड़ों साल पहले विवस्वान सूर्य देवता को भी दिया था, मतलब आज भी वही वही भगवदगीता है। तो ये धर्म का संस्थापन भगवान ही करते हैं, है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये जो भगवदगीता और भागवत और ये भगवान लीला करते हैं और गीता भगवान ने स्वयं बताया है, और ये गीता भागवत को लिखने के लिए, खास करके श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए, भगवान ने नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को एम्पोर किया ताकि लिख दीजिए आप, ताकि भगवान को पता है आगे जाकर कई सारे कलयुग में ऐसे बद्ध आत्मा आने वाले हैं, उनका उद्धार करने के लिए ये व्यासदेव को भगवान विशेष करके उनको एम्पोर करते हैं। तो और ये श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता दो टॉर्च लाइट है, दोनों हाथ में दो टॉर्च लाइट, जो कलयुग का जो अंधकार के युग में हर एक को ये रास्ता दिखाने वाला। तो जो व्यक्ति एक ज्ञान नाम के जो टॉर्च लाइट को अपने हाथ में नहीं लेता है वो खड्डे में गिर जाता है। क्योंकि अंधकार में व्यक्ति कहां गिरेगा, मतलब अंधकार में व्यक्ति खड्डे में गिर जाता है, लेकिन जिसके पास लाइट है वो खड्डे में नहीं गिर सकता है। इसलिए ये जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता और भागवतों को पढ़ता है तो उसी को असली जो लाइट है वो प्राप्त होता है और अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करता है। और खास करके भगवद गीता भगवान ने बताया है और श्रीमद् भागवतम को व्यासदेव ने लिखा भी है, तो फिर भी भगवान को लगा कि अभी भी लोग उसको पढ़ नहीं रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में स्वयं भगवान भी लीला करके जाते हैं और प्रचार करके जाते हैं, तो फिर भगवान ने जैसे प्रभुपाद जैसे एम्पावर्ड सोल है उनको भेजते हैं। प्रभुपाद जी बोले आप जाइए कलयुग में, ये कलयुग का जो जगत में जाइए, लोगों का उद्धार करके आइए। तो प्रभुपाद पूछे कैन यू टेल मी वन परफेक्ट रीजन व्हाई शुड आई गो टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में क्यों जाना चाहिए, मुझे ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता है। तो भगवान ने उनको बोला कि केवल मेरा जो गीता और भागवत के ऊपर परपोट लिख के आ जाओ, है ना। तो भगवान ने इनको भेज दिया। तो जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के परपोट को पढ़ता है, प्रभुपाद का गीता भागवत पढ़ता है, उसी को असली ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी जो गीता भागवतम को लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का स्थापना किया है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ही लीला है। यद्यपि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तो अगर कोई व्यक्ति अपना जो बुद्धि को सही लगा के इस्तेमाल करके वो देखेगा, उनको पता चलेगा कैसे श्रील प्रभुपाद जी ये भौतिक जगत के व्यक्ति है ही नहीं है, डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत से इस जगत में हमारा उद्धार के लिए वो आए हैं, उसका आप महसूस खुद कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, जब आप ये ग्रंथ वितरण करने लिए जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कैसे लोग इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो, अभी मैं रिसेंटली बस पार्टी में गया था, एक व्यक्ति ऐसा आ गया, डायरेक्ट आ गया सीधा, आपके पास भागवतम है क्या, सुंदर विश्वम प्रभु को पूछे भागवतम है क्या, सुंदर विश्वम प्रभु उनको मेरे पास भेज दिए। तो मैंने उनको पूछा आपको भागवतम चाहिए तो हमारे पास है, लेकिन उनको लाके दिखाया और वो 18 बुक वाला सम कंप्लीट भागवतम सेट, और वो बोल रहे नहीं नहीं मुझे वो 2 स्कंद वाला है क्या आपके पास? हमारे पास 2 स्कंद वाला नहीं है, हमारे पास पूरा 18 पुस्तक वाला है। तो उन्होंने बताया कि मैंने श्रील प्रभुपाद जी का भगवदगीता को पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे इच्छा हो गया कि मुझे भागवतम पढ़ना चाहिए। तो मेरे पास प्रभुपाद जी का भागवतम नहीं था, इसलिए मैं इधर गोरखपुर का भागवतम खरीद लिया, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो मुझे प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ना है। तो मैं बोला है मेरे पास है, आप ले सकते हैं, इसका कितना कीमत है? मैं बोला 5000 का भागवतम मराठी में। तो वो बोल रहे थे कि 5000 मेरे पास नहीं है। बोले आपके पास ATM कार्ड है तो आजकल कहीं भी पैसा मिल जाता है, तो ATM कार्ड से पैसा निकाल दीजिए। तो ठीक है मेरे साथ चलिए। तो फिर उन्होंने उनको घर के लेके गया घर में, और फिर संभव बाद में आके पैसा दे दिया। मतलब कहने का मतलब है, जो प्रभुपाद जी का भगवद्गीता पढ़ा है तो उनको भागवतम पढ़ने की इच्छा होता है। और एक व्यक्ति भगवद्गीता पढ़ा था, एक माता जी है, तो हम ग्रंथ वितरण कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे एक भागवतम चाहिए। मुझे लगा अरे ये मेरा फोन इनको कैसे मालूम पड़ा। तो क्या हुआ, एक दिन पहले हम लोग एक जगह भगवद्गीता वितरण कर रहे थे, करते करते एक जगह ये किसी डिवोटी ने कार्ड दे दिया, मंदिर का कार्ड दे दिया, और कार्ड में उन्होंने फोन किया मंदिर में, हम थे सतारा में, और मंदिर में फोन करके मंदिर में पूछा अभी मुझे भागवतम चाहिए, तो मंदिर वाले ने मेरा नंबर दे दिया उनको, और वो मुझे फोन करके भागवतम पूछ रहे थे। अब भी मतलब मैं कभी दूर की बात नहीं बोला, अब भी। तो फिर उनको मैंने भागवतम दे दिया। तो मतलब लोग भगवान के बारे में सुनने वाले पढ़ने वाले भी आजकल भी लोग हैं। तो ये भगवान का जो श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान में और श्रीमद् भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसीलिए भागवतम में भगवान बोलते हैं ये कृष्णा स्वधाम उपगते, भगवान जाने के बाद अपने धाम में जाने के बाद तो धर्म ज्ञान आदि भी धर्म और ज्ञान को साथ में लेके जाते हैं। ये सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि पूछते हैं कि भगवान अपने धाम में जाते हैं तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म किसी ने किसी का आश्रय लिया होगा, किसका आश्रय लिया? तो वहां पर बताते हैं कि कलौ नष्ट दृशामेश, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौरनिता की, तो कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क उदनोदिता। तो ये पुराण, ये जो श्रीमद भागवत नाम के पुराण का उदय हो चुका है, सूर्य जैसे तेजस्वी जो श्रीमद भागवतम है उसका उदय हो गया, प्रकट हो गया है। और कलौनश्च दृशामेश पूर्ण अर्क उदनोदिता, ये भागवतम का उदय हुआ है। और जो व्यक्ति ये श्रीमद भागवतम को पढ़ता है ध्यान पूर्वक, ये समझ के कि ये भगवान का स्वरूप ही है, तो उनको भगवान का दर्शन होता है। श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य अगर आपको चाहिए तो आप पढ़िए 1.3.43 वर्स में लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है उसको भगवान का दर्शन होता है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान का भक्ति से श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ेगा उनको भगवान का दर्शन हो सकता है। तो प्रभुपाद जी इसका आश्वासन देते हैं। तो यहां पर बताया गया कि यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों के साथ रहता था। वह उनके साथ जहां जहां जाता था और नाना विविध कार्य किया करता था। तो ये पुरंजन के बारे में यहां पर बताया, यहां पर दो ये लिखा है, एक है निर्वाक और एक पेशस्कृत, दो व्यक्ति के बारे में बताया, निर्वाक और पेशस्कृत। तो ये पैरों को निर्वाक बताया गया है। तो निर्वाक मतलब क्या है? निर्वाक वाक मतलब ये वेद शास्त्र को वाक बोलते हैं। तो खास करके वर्णाश्रम में बताया गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चार वर्ण और चार आसन। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों को शास्त्र वेद पढ़ने के लिए मना किया गया है, जन्म से नहीं कर्म से। जो शूद्र है उनको शास्त्र वेद शास्त्र अध्ययन करने के लिए मना किया गया है। तो जो शूद्र कैटेगरी है, खास करके कलौ शूद्र संभव, कलयुग में हर व्यक्ति शूद्र है। शूद्रों को ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है तो अंधे हैं, उनको मना किया गया है। तो लेकिन अगर कोई एक एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स का गाइडेंस लेते हैं, ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मिलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब जो व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है और गुरु का गाइडेंस से वो अपने ये जो तमोगुण और रजोगुण से परे हो जाता है, और गुरु की कृपा से वो तमोगुण और रजोगुण को परे होके सत्वगुण में आता है, तो उसको ये शास्त्र समझ में आता है। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने शिप में ये लिखा, सॉन्ग लिखा। पता नहीं मुझे कैसे ये लोग तमोगुण और रजोगुण वाले लोग हैं वो श्रीमद् भागवतम जैसे ज्ञान को कैसे समझेंगे मुझे पता नहीं। तो लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से तो जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कभी सुना भी नहीं था, नाम तक सुना नहीं था, ऐसे लोग शुद्ध भक्त बन जाते। कैसे? गुरु की कृपा से। तो ये पैर को बारे में बताया गया कि निर्वाक और पेशस्कृत, पेशस्कृत हाथों के लिए नाम बताया गया है। तो व्यक्ति अपने हाथों से ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है, ऐसे ऐसे कार्य कर बैठता है कि अपने आप को कर्म बंधन से पूरा लपेट लेता है। जैसे कोई रेशम का कीड़ा होता है, वो रेशम का कीड़ा वो एक कोकून बनाता है, और कोकून बनाते 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 पूरा अपना पूरा कोकून को पैक करके उसके अंदर मर जाता है। उसी प्रकार जो जीवात्मा है ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, कार्य करके कर्म बंधन में ऐसे फंस जाते हैं तो वो निकलने का सवाल ही नहीं है। तो ये हमारे जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का मालिक भगवान कृष्ण का सेवा करने से ही ये व्यक्ति मुक्त हो जा सकता है। तो ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही भक्ति है। भगवान हमारे इंद्रियों से भगवान का सेवा करना ही भक्ति है। अगर इंद्रियों से भगवान का सेवा छोड़ के हमारा इंद्रियों को तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तो ये कुकुन हम बना रहे हैं, हमारा कुकुन हम ही बना रहे हैं ताकि उसके अंदर हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए बताया गया कि ये जो इंद्रिया जो दिया गया है वो भगवान का सेवा करने के लिए दिया गया है। जो भी इंद्रिया है, जैसे अम्बरीश महाराज ने हरेक इंद्रियों से भगवान का सेवा किया, तो सबसे पहला इंद्रिय क्या है? सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मतलब मन को पहले भगवान का चरण में डाल दिया तो बाकी सारे अपने आप आ जाता है। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णनी करौ हरेर मंदिर मादनादिशु, मतलब हाथों से भगवान का मंदिर का मार्जन साफ सफाई किया था। हालांकि राजा थे, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उनको पता था कि जीवेरा स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास है। हर इसमें जीव भगवान के दास है, कभी भी मालिक नहीं हो सकता है। तो दास हमेशा दास ही रहेगा, भगवान का सेवक ही रहेगा। तो वो राजा हो या प्रजा हो, कोई भी है भगवान का सेवक है। हर एक व्यक्ति को भगवान का सेवा करने से ही वो भगवान का भक्ति करके वो मुक्त हो सकता है। तो इसलिए राजा अम्बरीश महाराज ने अपने करौ हाथों से भगवान का मर्जन कर रहा था और पैरों से भगवान का मंदिर का तक वो चल के जाता था। तो इसलिए अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं कि हर एक इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाया था। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इवन इफ यू एंगेज वन ऑफ योर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एक इंद्रियों को भी अच्छी तरीके से भगवान का सेवा में लगा दीजिए तो आपको भगवान के धाम निश्चित है। तो भगवान का इंद्रिय है वो परिपूर्ण है, हमारे इंद्रिय पूर्ण नहीं है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान का हर एक अंग से हर एक कार्य भगवान कर सकते हैं। भगवान का चरण के सामने आप कुछ भोग लगा के रख दीजिए, भगवान उसको देख सकते हैं, चरण से देख सकते हैं। ऐसी जरूरत नहीं झुक के देखने की, जब हमारे सामने प्लेट लगा हमको झुक के देखने पड़े क्या क्या है अंदर, है ना। तो भगवान का हर एक इंद्रिया परफेक्ट है, लेकिन हमारा इंद्रिय परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमें इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाने से ये परिपूर्ण हो सकता है। भगवान का सेवा करना ही इंद्रियों का कर्तव्य है। तो इसलिए यहां पर पुरंजन को बारे में बताया गया कि दोनों ये अंधा लोगों का उन्होंने सहारा लिया। तो नारद मुनि ये बता रहे हैं असली ज्ञान यहां पर बता रहे हैं, हालांकि यहां पर कई सारे टेक्निकल डिटेल्स रहेगा। श्री राधा मदन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौरनीताय की, हालांकि यहां पर कई सारे टेक्निकल डिटेल्स दिया गया है जिसको समझना कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी ये डिटेल्स को पढ़ने से श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पढ़ने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हालांकि इतना कठिन नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने से हर व्यक्ति हर चीज को समझ सकता है, और जो अपने अंधकार को दूर करके भगवान के धाम का रास्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।